अभी अक्टूबर की 22 तारीख से श्री कार्तिक दामोदर मास की शुरुआत हो रही है। कार्तिक दामोदर मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 22nd ऑफ अक्टूबर। तो उसी उपलक्ष्य में हम उनके स्वागत की तैयारी में भगवान श्री दामोदर जी के बारे में कुछ कहने का प्रयास करेंगे। और दामोदर लीला हम कई बार सुनते हैं, पर ये जो दामोदर अष्टकम हम एक महीने तक गाते हैं, कई भक्तों को इसका वर्ड बाय वर्ड मीनिंग पता नहीं होता है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि उसके बारे में कुछ कहने का प्रयास करें। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की
जय।
नमामि स्वरं सच्चिदानंद रूपं लसत्कुंडलं गोकुले भजमानं।
Hare Rama,
Hare Rama, Hare Rama.
की
जय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
शिवा सादि गौर भक्त वृंदा
टेक्नोलॉजिकल एज में कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो मुझे अपना कंप्यूटर बंद करना पड़ रहा है, ये चल नहीं रहा है। तो आज हम दामोदर अष्टकम पे कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ये जो महीना है दामोदर का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और जैसे कई बार जब हम गए थे तो बता रहे थे कि ये सेल के समान है, जब सेल लगता है तो बहुत ही कीमती वस्तु जो होती है बहुत सस्ते में मिल जाती है। तो इस महीने का ये बेनिफिट है कि हमको बहुत ही सस्ते में भक्ति मिल जाती है। भक्ति मिलना बहुत दुर्लभ है। भगवान किसी को भी मुक्ति दे देते हैं लेकिन भक्ति नहीं देते हैं। भक्ति इज़ वेरी वेरी रेयर, वेरी डिफिकल्ट एंड अनऑप्टेनेबल प्रैक्टिकली। लेकिन भगवान इतने कृपालु है कि कुछ एक्सेप्शन देते हैं। जैसे हम श्रील प्रभुपाद जी के बारे में चर्चा कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि ये जो हमारे तीन भगवान है बहुत इम्पॉर्टेंट, भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री कृष्ण और श्री चैतन्य महाप्रभु, ये तीनों किस तरह के भगवान है उसके बारे में थोड़ा सा हमने चर्चा किया था कि भगवान रामचंद्र जी जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो धर्म परायण है पूरा। जो भी चीज धर्म के सिद्धांत से होती है उसी को फॉलो करना है, ये हमको श्री रामचंद्र जी ने सिखाया। तो जैसे एक कथा आती है रामायण में कि एक बार भगवान रामचंद्र जी, हरे कृष्ण टेक्नोलॉजी, हरे कृष्ण, वेयर इज आवर एक्सपर्ट्स, हरे कृष्ण। तो वो जब जंगल में गए तो एक देखा शूद्र वेदों का पाठ कर रहा था, तो श्री रामचंद्र जी ने उसे खत्म कर दिया। चलेगा प्रभु, छोड़ता हूँ। और भगवान कृष्ण जो है वो प्रेम परायण है, वे धर्म से ज्यादा प्रेम को महत्व देते हैं। हरे कृष्ण। तो वो प्रेम को ज्यादा महत्व देते हैं धर्म से। तो जैसे जब वो मथुरा जा रहे थे, हमने ये लघु नाटिका में भी दिखाया था, ड्रामा में जो जन्माष्टमी पे हुआ, कि भगवान जब मथुरा में आए कृष्ण और बलराम, तो उन्होंने धोबी से कुछ कपड़े मांगे और धोबी ने कपड़े दिए नहीं, तो भगवान ने क्या किया, एक हाथ से प्रहार किया और धोबी का वध कर दिया। तो वे इस तरह से स्ट्रिक्टनेस फॉलो करते हैं, लेकिन अपने जो भक्त होते हैं उनके साथ बड़ा प्रेम करते हैं। तो उनके भक्त ने अगर कुछ गलती की तो पीछे छुपा देते हैं, बोलते नहीं ठीक है यार, मेरा ही आदमी है, मेरा ही भक्त है, छोड़ दे इसको। तो प्रेम करते हैं। तो कहते हैं भगवद गीता में कि मैं किसी से पक्षपात नहीं करता, लेकिन बड़ा पक्षपात करते हैं, पार्शियलिटी बहुत करते हैं। तो भगवान जिनसे प्रेम करते हैं उनका साथ देते हैं। भगवान रामचंद्र जी के ऐसा नहीं, जैसे सीता माता पे अगर किसी ने कुछ ब्लेम कर दिया तो जंगल में छोड़ा है, ऐसे भगवान कृष्ण नहीं करते थे। तो भगवान रामचंद्र बिल्कुल धर्म परायण, भगवान कृष्ण बिल्कुल प्रेम परायण, और श्री चैतन्य महाप्रभु जो है वह क्या है, वह कृपा परायण है। वे उनसे एक स्टेप और आगे हैं कि अगर उन्होंने किसी ने कोई गलती भी कर दी तो उसको माफ ही नहीं कर देते हैं, उसको कृष्ण प्रेम दे देते हैं, बोलते ठीक है लेके जा। जैसे जगायन मधाई, वो आके जब उनका उनको जब सजा देने की बारी आई तो हालांकि उन्होंने चक्र उठा लिया लेकिन फिर भी उनको प्रेम भक्ति दे दी। तो ये प्रेम भक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आसानी से मिलती नहीं है। और उनसे एक स्टेप आगे उनके भक्त होते हैं, जैसे नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु जगायन मधाई को मारने के लिए आगे आ गए लेकिन नित्यानंद प्रभु ने कहा कि नहीं उन्हें माफ कर दो। तो भगवान का भक्त जो होता है वो भगवान से भी ज्यादा कृपा परायण होता है। तो भगवान जो है वो अपनी कृपा का प्रदर्शन कर रहे हैं और ये इस महीने में दे दिया कि इस महीने में जो भी भक्ति करेगा उसको ज्यादा लाभ होगा। तो ये जो भी हम दामोदर अष्टकम गाए उसका एक एक जो श्लोक है उस पर कुछ चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे, कुछ प्रयास करेंगे। और आज हो सकता है क्लास थोड़ी ज़्यादा हो जाए, इसका मुझे भान है, और शायद कुछ लोग विचलित हो, तो मैं उनसे पहले ही माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि अगर ऐसा कुछ है तो कृपया मुझे माफ़ कर दो। कोई इंटेंशन नहीं है लंबी क्लास लेने का, लेकिन क्योंकि ज़रूरत है, क्योंकि नेक्स्ट फ्राइडे शायद हम हो सकता नहीं बोल पाएंगे, और पिछले शुक्रवार को परम पूज्य जयप्रताका स्वामी महाराज ने क्लास दी थी, उसके पहले प्रसादेश्वर कृष्ण प्रभु ने क्लास दी थी, और दोनों इंग्लिश में हुई थी, तो मैंने उचित समझा कि हम हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में बोलने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर ये जो श्री दामोदर अष्टकम है, इसकी जो रचना है ये पद्म पुराण में आई है और सत्यव्रत मुनि द्वारा रचित है, और ये सत्यव्रत मुनि और नारद मुनि और शौनक ऋषि में ये वार्तालाप हो रहा है, जहाँ पर वो उनको इस दामोदर अष्टकम के बारे में बता रहे हैं। इस पे श्रील सनातन गोस्वामी पाद ने टीका लिखी है, कमेंट्री लिखी है, दिग्दर्शनी टीका, और उसी टीका के आधार पर हिज ग्रेस गौरांग प्रभु ने एक क्लास दिया था, और उसी क्लास के आधार पर हम ये कुछ बोलने का प्रयत्न करेंगे। तो ये क्लास मैं ऑलरेडी एक बार श्याम देश में और अवतारी देश में दे चुका हूँ, तो कुछ भक्त ऐसे होंगे जिनके लिए रिपीटेशन होगा, तो उनसे भी मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो ये शुरुआत हो रही है और वो कह रहे हैं, नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम वसत कुंडलम गोकुले भ्रजमानम यशोदा वियोलोक लाधवमानम परामृष्टम अत्यंत तो धृत्य गोप्या। तो वे कह रहे हैं, तो ये जो 8 श्लोक है इस तरह का वर्णन आता है कि इसको भुजंग प्रायिता कहते हैं। भुजंग प्रायिता मतलब ये सर्प की तरह चलता है, कभी स्वर ऊंचा जाता है कभी नीचे आता है। सो ये विशेष रचना है। सो वे कह रहे हैं, नमामि ईश्वरम, नमामि मतलब सबसे पहले क्या कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, प्लीज एक्सेप्ट माई हम्बल ओबेसेंसेस। हम कोई भी कार्य करने के पहले भगवान को प्रणाम करते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं, वैष्णव को प्रणाम करते हैं। तो वे कह रहे हैं कि नमामि, मैं प्रणाम कर रहा हूँ, और क्या कहते हैं आगे, ईश्वरम। तो ये ईश्वर जो है, ये शब्द इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि तुरंत प्रणाम करने के बाद वो किसको एड्रेस कर रहे हैं, ईश्वर को। तो ये समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि दामोदर लीला की जब चर्चा हो रही है तो इसमें इस लीला के अंदर इस तरह का वर्णन आता है कि भगवान जो है वो एक नन्हे शिशु के रूप में लीला क्रीड़ा कर रहे हैं, और उनकी लीला क्रीड़ा देखकर शायद कोई भ्रमित न हो जावे, तो भगवान की लीला को अति मानवीय घोषित करने के लिए सबसे पहले उन्हें ईश्वर सबसे संबोधित कर दिया, नमामि ईश्वरम। नहीं तो किसी के मन में संशय आएगा कि ये ऐसी इस तरह की लीला हो रही है जैसे भगवान रोने लगे, फिर यशोदा माता उनके पीछे पीछे भाग रही है, भागते भागते फिर उनको पकड़ लिया, फिर भगवान रो रहे हैं, आँख मल रहे हैं, और इस तरह से भाग रहे हैं, माता उनके पीछे जा रही है, और इस तरह से जो चर्चा चल रही है इसको देख के कोई सोचेगा, मेरे बचपन में भी मैं कुछ ऐसे ही करता था, और मेरी माँ मुझे दंडित करती थी इस तरह से लकड़ी वगड़े लेके, तो कहीं मेरे बारे में तो नहीं कह रहे हैं। तो कह दें, नहीं जी, ये चर्चा हो रही है ईश्वर के बारे में, आपके बारे में नहीं, और किसी नन्हे शिशु के बारे में नहीं। और ये घबराते हुए, रोते हुए, भागते हुए, डरते हुए जो नन्हे शिशु है, वो पहले ही बता देना चाहता हूँ, ईश्वर है, ये साधारण नहीं है। नहीं तो जब ईश्वर शब्द की चर्चा होगी तो कई हाथ खड़े हो सकते हैं, जैसे जैसे गॉड, जैसे प्रभुपाद जी ने जब इस्कॉन की स्थापना की तो उन्होंने नाम रखा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो किसी ने सजेस्ट किया, प्रभुपाद वाई नॉट गॉड कॉन्शियसनेस, एंड प्रभुपाद सेड, इंडिया इज सुपर मार्केट ऑफ गॉड, यू नो गॉड्स आर मैन्युफैक्चर्ड एवरी डे, सो मैनी गॉड्स आर कमिंग, यू नो हम जानते हैं। वो हमारा विषय नहीं है, हम उसमें चर्चा नहीं करेंगे। तो कई हाथ खड़े हो जाएंगे कि मैं भी ईश्वर हूँ, कोई कहेगा मेरा नाम भी ईश्वर है, कोई कहेगा मेरा सरनेम ईश्वर है, तो इस तरह से कई ईश्वर खड़े हो जाएंगे। और कई बार हमको लगता है हम लोग भी ईश्वर हैं, ईश्वर मतलब होता है कंट्रोलर, तो हम लोग अपने आप सोचते हैं कि हम बहुत कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ये सब छोटे छोटे ईश्वर है। भगवान कौन है, परमेश्वर है, इसलिए ब्रह्मा जी ने उनको क्या नाम से घोषित किया, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारण, तो वो परम ईश्वर है। तो ये जो भी भाग रहे हैं माँ से डर के, ये कौन है, ईश्वर है। तो जब भी हम इस दामोदर अष्टकम के बारे में गाएंगे या इसके बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे, तो एक चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है कि हर शब्द को गाते समय हमें ईश्वर लगाना नहीं भूलना है। तो नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम ईश्वरम लसत कुंडलम ईश्वरम गोकुले भ्रजमानम ईश्वरम यशोदा वियोलुक ईश्वरम। सो इस तरह से जब ईश्वर ईश्वर लगाते जाएंगे तभी शायद हमारे बुद्धि में ये बात घुसेगी कि भाई मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। नहीं तो बिना भगवान की शक्ति को जाने अगर भगवान की लीलाओं को का वर्णन करने का हम प्रयास करेंगे और उसको सुनने का प्रयास करेंगे तो कई बार हम मात खा जाएंगे, जैसे ब्रह्मा जी खा गए थे। कैसे? ब्रह्मा जी भी समझ नहीं पाए भगवान कृष्ण कौन है और उनकी लीला क्रीड़ा क्या है, तो उन्होंने बछड़ों को और ग्वालों को छुपा दिया और फिर वो ब्रह्म विमोहन लीला हुई और फिर ब्रह्मा जी की समझ में आया कि मैंने क्या गलती की। तो ब्रह्मा जी के चार सिर है और ब्रह्मा जी का पूरा शरीर जो है वो ज्ञान से भरा हुआ है। उनका ज्ञान से भरा हुआ शरीर चार मस्तिष्क को लेके उनके समझ में नहीं आया कृष्ण कौन है। तो हमारे जैसे एकदम जाड़ी बुद्धि के व्यक्तियों को जिनका एक दिमाग है या है कि नहीं भी वो पता नहीं, तो उनको क्या समझ में आएगा। क्योंकि एक बार किसी ने प्रभुपाद जी से कहा, प्रभुपाद व्हाई आर यू ब्रेन वॉशिंग अवर चिल्ड्रेन, एंड प्रभुपाद सेड टू वॉश समथिंग यू शुड हैव, यू नो, कुछ होने के लिए पहले दिमाग होना चाहिए। जिस व्यक्ति को यही पता नहीं है कि आत्मा और शरीर में अंतर क्या है, उसमें ब्रेन है किधर, द पर्सन हु इज नॉट नोइंग द डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड द सोल, वेयर डज ही हैव द ब्रेन। और अगर समझो ब्रेन है भी थियोरिटिकली, सो उसमें गोबर भरा हुआ है, तो उसको हम साफ करने का प्रयास करें। सो वी आर नॉट ब्रेन वॉशिंग, वी आर वॉशिंग देयर ब्रेन्स। तो ये समझना बड़ा मुश्किल है। जैसे हम राधाष्टमी के दिन चर्चा कर रहे थे तो हमने काफी समय बिताया उस पॉइंट को डिस्कस करने के लिए कि हम कौन है और हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, कि हम 1/10,000 भाग, 1/10,000 टिप ऑफ एयर, इतना हमारा साइज है और उस साइज की बुद्धि कितनी छोटी होगी हम सोच सकते हैं। और उस बुद्धि से हम परमेश्वर को अगर पकड़ने का प्रयास करेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे, मात खा जाएंगे। इसके लिए इम्पॉर्टेंट यह है कि जो कुछ भी हम चर्चा करने वाले हैं या जो कुछ भी हम सुनेंगे, जो कुछ भी कहेंगे, उसमें ईश्वर शब्द लगाना नहीं भूलना है। तो जो कुछ भी हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे तो हमको समझना है कि ये प्रयास उस व्यक्ति के लिए हो रहा है जो ईश्वर है, वो परम ईश्वर है, सबके स्वामी है। अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये पूरा संसार जो है वो मुझ पर उस तरह से आश्रित है, मत्तः परंतर न अन्य किंचित अस्ति धनंजय मई सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणायव, कि ये सारा संसार जो है मुझ पर उसी तरह आश्रित है जिस तरह से मणि एक धागे पर आश्रित होते हैं। तो हम उस पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं और इतना इंट्रोडक्शन दे के हम और आगे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो वे कह रहे हैं नमामि ईश्वर सच्चिदानंद रूपम। तो किसी व्यक्ति के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो उसके मुख्य रूप से दो गुण होते हैं, एक होते हैं मुख्य गुण और दूसरे होते हैं गौण गुण। गौण मतलब होता है सेकेंडरी, इंग्लिश में इसको कहते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सो प्राइमरी क्वालिटी क्या है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, यह प्राइमरी है, ये भगवान। और सेकेंडरी क्या है कि उनके रूप गुण लीला नाम उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे कह दिया सच्चिदानंद रूपम। तो एक बार प्रभुपाद जी अफ्रीका में लेक्चर दे रहे थे और उन्होंने कह दिया लेक्चर में कि कृष्ण काले हैं, तो सारे अफ्रीकन लोग हंसने लगे, एकदम स्माइल आ गई उनके चेहरे पे। प्रभुपाद ने भांप लिया, कहा तुम्हारे जैसे नहीं, वह रूप अलग है, वह रूप जो है वो ये सांवला रूप नहीं है, तो ये भिन्न है। और उसके उसका ये जो रूप है सच्चिदानंद रूपम, ये जो मुख्य रूप है, सॉरी गौण रूप एक्चुअली फिर बाद में आएगा, मुख्य रूप है कि ये जो सच्चिदानंद विग्रह जो है ये भगवान का साक्षात रूप है। कई लोग सोचते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान का कोई गुण नहीं है, वो निराकार है, निर्गुण है। तो निराकार और निर्गुण का मतलब ये है कि वो तुम्हारे जैसा आकार नहीं है उसका। हमारा ये जो भद्दा आकार है जिसको हम इतना इसके पीछे इन्वेस्टमेंट करते हैं और इतना खर्च करते हैं, ये जो है ऐसा आकार नहीं है भगवान का। और हमारा जो रूप है, कई बार हम लोग यूनिवर्स और वर्ल्ड के कॉन्टेस्ट में शामिल हो जाते हैं और कई प्राइज ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान का जो रूप है, भगवान का जो गुण है, वो दिव्य है। और दिव्य का क्या मतलब होता है कि वो परे है आकाश के। दिवी का मतलब होता है, दिव्य शब्द दिवी से आता है, और दिवी का मतलब होता है आकाश। तो जो चीज आकाश के नीचे है वो अदिव्य है, और जो आकाश के ऊपर है परम धाम, इसलिए भगवान कहते हैं न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गतवान निवर्तन्ते तद धाम परम मम। तो ये मेरा जो है रूप के बारे में चर्चा कर रहे हैं भगवान का। और बाद में वो कहते हैं नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम, तो भगवान जो है उनका रूप है। तो ये जो फिलोसफी लोग सुनते हैं कि भगवान निराकार है निर्गुण है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आकार नहीं है भगवान का, और ये है कि भगवान का आकार हमारे जैसा नहीं है, या मतलब एक्चुअली ऐसा बाइबल में कहा गया है कि मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ द गॉड, सो उस तरह का उनका आकार है, फिर भी वो दिव्य है। तो दूसरा आगे चर्चा आती है लसत कुंडलम। लसत कुंडलम का क्या मतलब है कि भगवान जो ये लीला कर रहे हैं तो इसमें जो भगवान भाग रहे हैं तो उनके कानों में कुंडल लगे हुए हैं और मकराकृत कुंडल जो है वह आगे पीछे हिलते हैं। और ये जो कुंडल है इसके बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो कोई व्यक्ति ऐसा सोच सकता है कि अरे अभी आपने इतना सारा बात कह दिया भगवान के रूप के बारे में सच्चिदानंद रूपम, तो उस सच्चिदानंद रूप के लिए भी क्या उनको आभूषण की आवश्यकता है, क्या उनको ज्वेलरी पहननी पड़ती है, बिना ज्वेलरी पहने क्या उनका रूप सुंदर नहीं लगता? तो कह रहे हैं कि नहीं, लसत कुंडलम का क्या मतलब है, तो आभूषण का प्रयोग हम क्यों करते हैं? आभूषण का प्रयोग हम करते हैं अपने रूप लावण्य को निखारने के लिए, अपने शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए, लेकिन भगवान के केस में ऐसा नहीं होता। तो कभी हम जैसे कोई व्यक्ति किसी से कहता है कि अरे आज तुमने कितना सुंदर कुंडल पहना है ना, उस कान में इतना अच्छा सुंदर बाली लगा लिया तुमने, या हाथ में कितना अच्छा कंगन पहन लिया है, तो इस तरह की तारीफ लोग करते हैं। लेकिन भगवान जो है उनके बारे में श्रीमद् भागवतम में हमको जानकारी मिलती है परम पदम भूषणम भूषणांगम। तो उद्धव जी है वो ये कहते हैं कि मैंने भगवान को बहुत ही करीब से देखा है और भगवान का रूप इतना श्रेष्ठ है कि पूरे ब्रह्मांड का जो ये लावण्य है वह किसमें है? वह भगवान श्री कृष्ण में है। और अपने इस रूप लावण्य को रूप लावण्य से विस्मित होते हुए स्वयं मैंने कृष्ण को देखा है। जैसे आपने वो कथा सुनी होगी कि भगवान द्वारिका में जब थे तो एक खंभे के सामने जब वो गए जो हीरे मोती से जड़ा हुआ था उसमें किसी को देख के विस्मित हो गए और सोचने लगे कि ये व्यक्ति कौन है। तो वो भगवान का रिफ्लेक्शन था, उनका प्रतिबिंब था, तो उसको देख के बड़े विस्मित हो गए। तो उद्धव जी बताते हैं कि मैंने कृष्ण को निकट से देखा है और इसलिए उसकी उनकी बातों में दम है। मैं अगर कहूं कि कल शाम को भगवान मेरे सपने में आए थे और ऐसे दिख रहे थे तो कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन उद्धव जी क्योंकि उन्होंने भगवान के साथ समय बिताया है, उनकी इस बातों में दम है। तो यदि अगर हम अगर कान में कोई कुंडल धारण करते हैं तो लोग कहेगा अरे वाह क्या मस्त कुंडल धारण किया है आपने, आपके कान ने कितना अच्छा कुंडल धारण किया है। लेकिन कृष्ण जो है उनकी देह का जो प्रत्येक अंग है वो भूषण से भी भूषण है, मतलब वो भूषण को भी विभूषित कर देता है, आभूषित कर देता है और उसके सौंदर्य को वो बढ़ाता है। तो भूषण से कुंडल से कृष्ण का सौंदर्य नहीं बढ़ रहा, कृष्ण की वजह से वो कुंडल का जीवन धन्य हो गया। तो कोई ये कह सकता है जब अगर कृष्ण के पास अगर कुंडल आएगा तो लोग क्या कहेंगे कि यार कुंडल क्या अच्छा कान धारण किया है, मतलब कान को कहते हैं कुंडल धारण किया है, लेकिन कृष्ण के पास आ गया तो कोई देख के कुंडल को कहेगा कि यार कुंडल क्या कान धारण किया है, वो कान जिसको कोई नहीं पकड़ सकता, उसको पकड़ने के लिए वो तूने उसको धारण किया तो कितनी। तो उसी प्रकार जीव जो है वो अगर ये केन प्रकारण कृष्ण से जुड़ जाए तो क्या होता है कि हमारे जुड़ने से कृष्ण तो आत्माराम है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम किसी प्रकार से भगवान कृष्ण से जुड़ जाए तो हमारा जीवन उस कुंडल की तरह धन्य हो सकता है। तो इसलिए जरूरत है कि हम कुछ भी करें भगवान कृष्ण को केंद्र में रखें और भगवान से जुड़े। तो एक दृष्टि से भगवान कृष्ण को किसी की आवश्यकता नहीं, वे आप तत्काम है, आत्मा राम है, लेकिन अगर हमारा जीवन उनके संपर्क में आता है तो अपने आप हमारा जीवन सफल हो जाता है। तो ये मतलब है लसत कुंडलम का। लसत कुंडलम मतलब अगर हम भगवान कृष्ण से जुड़ जाएं तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। वो आगे कहते हैं गोकुले भ्रजमानम। तो गोकुले अर्थात गोकुल के बारे में चर्चा हो रही है, गोकुल के निवासी भगवान का जो नित्य धाम है उसे गोकुल या गोलोक वृंदावन कहा जाता है। तो गोकुल में गोकुल निवासी रहते हैं, सारे ब्रजवासी रहते हैं, और बाह्य दृष्टि से हमको ये लग सकता है कि ये क्या है, ये जो ब्रजवासी है ये साधारण लोगों की जैसे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, कृषि का व्यवसाय कर रहे हैं, गाय का पालन कर रहे हैं, और इनमें क्या है एक्चुअली, कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से घरेलू कार्य में, गोरक्षा में, कृषि में इस तरह से लगे हैं। लेकिन समझने की बात यह है कि गोकुल के जो निवासी है उनमें सबसे बड़ा गुण यह है कि उनके जीवन का केंद्र भगवान श्री कृष्ण है। तो यदि किसी के जीवन का केंद्र भगवान कृष्ण न हो तो उसका जीवन सफल नहीं हो जाता। तो इसलिए जब घर बनाते लोग तो पहले पुराने जीवन जमाने में घर को लोग भवन कहते थे। भवन का क्या अर्थात होता है? भवन का मतलब होता है कि भ अर्थात भगवान, भवन कि जिस भवन में भगवान निवास करे वह भवन है। लेकिन क्या हो गया कि जिस घर से अगर हम भगवान को निकाल देंगे, बाहर कर देंगे, भ हट जाएगा तो क्या बचेगा? वन। और वन में किस प्रकार के प्राणी रहते हैं ये बतलाने की आवश्यकता नहीं है। तो जिसके घर में भगवान नहीं है वह वन और वन से गया बीता है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं यावद रागा देस्तेन यावद कार ग्रहम ग्रहम यावद मोह मृणिगढ़ो तावद कृष्ण तेजना। वो कहते हैं कि ब्रजवासियों की लीलाओं को देखकर कोई भ्रमित हो जाएगा, जैसे ब्रह्मा जी स्वयं हो गए थे। और ये ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं कि उनकी जो साधारण घरेलू कार्य को देख के हमको ऐसा लगा कि ये ब्रजवासी लोग तो क्या साधारण लोग है। और रागा देश तेन, और फिर क्या होगा कि हमारी बुद्धि जो है वो चुरा ली जाएगी। और जब बुद्धि चुरा ली जाती है तो उसको क्या करते हैं, चोर को पकड़ के कहाँ पे डालते हैं? कारागार में। कारागार मतलब होता है जेल। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं यावत कार ग्रहम ग्रहम, ये कारागार है जिसके अंदर अगर हम मात खाएंगे तो हमारी बुद्धि जो चोर के माफिक हो जाएगी उसको पकड़ के कारागार में डाल देंगे और फिर हम कुछ नहीं समझ पाएंगे। लेकिन कई लोगों को लगता है कि कार ग्रहम का मतलब ये है कि हमारे घर में कार आ गया तो हमारा ग्रह कार ग्रहम बन जाएगा। तो इसके लिए हर चीज को हम बटोरने की कोशिश करते हैं। एक बार प्रभुपाद जी बैठे थे और उनके पास एक व्यक्ति आया और प्रभुपाद जी से कहने लगा कि प्रभुपाद मेरे पास आगरा में एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री दिल्ली में है, एक जयपुर में है, एक यहाँ है, एक वहाँ है, लेकिन मेरे को रात को नींद नहीं आती। तो प्रभुपाद जी ने कहा सारे की सारी फैक्ट्री हमको दे दो और चैन से सो जाओ। तो घबरा गया, बोला अच्छा स्वामी जी मैं जाता हूँ। तो प्रभुपाद ने भक्तों से कहा इसका एड्रेस ले लो। तो बोला नहीं मेरे पास तुम्हारा एड्रेस है, मैं आ जाऊंगा। प्रभुपाद ने कहा हम भी आना चाहते हैं, एड्रेस दो। तो भाग गया। और प्रभुपाद उसके जाने के बाद कहने लगे भक्तों से कि देखो कितना मोह है इसको, इसको लगता है कि जितना ज्यादा मैं बटोरता जाऊंगा उतना ज्यादा मैं सुखी होता जाऊंगा, लेकिन धन और सुख में कोई संबंध नहीं है। कोई व्यक्ति कितना भी धनी ना हो, धनी क्यों ना हो, वो सुखी होगा ये जरूरी नहीं। इसके लिए सुख का संबंध सीधा भगवान श्री कृष्ण से है। नहीं तो हम सिर्फ चिंता करते रहेंगे, और चिंता और चिता जैसे गौरांग प्रभु बताते हैं कि चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क है। चिता सिर्फ एक बार जलाती है, वो भी मृत शरीर को, लेकिन चिंता क्षण क्षण जलाती है। और इसलिए चिंता से बचना है तो क्या करना चाहिए? चिंतन करना चाहिए भगवान का। तो भगवान का हम नाम लेंगे तो ही हम सुखी हो सकते हैं। तो इस तरह से कृष्ण के साथ संबंध हमको स्थापित करना है और गोकुल के जो निवासी है उस तरह से हमको बनने का प्रयास करना है। तो गोकुल के निवासी जो है वह भगवान श्री कृष्ण के बारे में हमेशा चिंतन करते रहते हैं। और इसके लिए जब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये जो साधारण दिखने वाले जो निवासी है इनके साथ भगवान किस तरह की लीला कर रहे हैं, तो उनके जो आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। और उन्होंने फिर श्रीमद् भागवतम में कहा अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप व्रजोक साम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। वे कहा कि ये जो ब्रजवासी है इनका कितना भाग्य है। अहो भाग्य, अहो मतलब होता है बहुत ज्यादा, अहो भाग्यम नंद गोप व्रजोक साम कि ये जो नंद महाराज है उनके जो मित्र है गोप है व्रजोक साम इतने सारे जो है इनका कितना ज्यादा भाग्य है। क्यों, क्या हो रहा है? क्योंकि यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम के पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण जो है वह इनके साथ क्या किए हुए हैं, इनके साथ फ्रेंडशिप किए हुए हैं, इनके साथ मित्रता किए हुए हैं, और इसके लिए इनका कितना सौभाग्य है। तो भगवान के मुख्य रूप का वर्णन हो गया, रूप का वर्णन हो गया, गुण का वर्णन हो गया, अभी लीला का वर्णन कर रहे हैं। और परीक्षित महाराज बहुत ही आतुरता के साथ सुखदेव गोस्वामी महाराज से पूछते हैं, कहते हैं कि अभी आपने सोम वंश और सूर्य वंश के राजाओं का वर्णन किया है, उनके कार्यकलापों का वर्णन किया है, और बहुत जो वीर रस था उसके बारे में बता दिया, लेकिन अब मैं भगवान की लीलाओं के बारे में सुनना चाहता हूँ, तो मुझे बताओ। तो भगवान के बारे में सुनने के लिए उनको इतना रस था कि सुखदेव गोस्वामी महाराज ने उनकी बहुत तारीफ की और फिर उनको आगे बताना शुरू किया। और फिर वे दामोदर लीला के बारे में बताते हैं भगवान के जन्म के बाद। वे कहते हैं कि यहाँ जो शब्द आता है यशोदा भियोलुक, तो यशोदा का यह मतलब होता है कि जो हमेशा कृष्ण को अपने केंद्र में रखे। तो यशोदा माँ क्या चाहती थी कि कृष्ण सुखी रहे हमेशा। हर माँ की इच्छा होती है कि अपना जो पुत्र है वो सुखी रहे, तो उसके लिए अलग अलग तरह का माखन निकाल के देती थी। लेकिन भगवान कृष्ण क्या करते थे, एक्चुअली भगवान कृष्ण गौरस के बहुत शौकीन है, और गौरस का क्या मतलब है कि दूध घी मक्खन दही छाछ बटर जो है ये सब भगवान को बहुत प्रिय है। तो ये बटर चुराने के लिए भगवान माखन खाने के लिए यहाँ वहाँ भटकते रहते थे। और ये सब बात लेके, जैसे हमको भगवान के माखन चोरी की लीला के बारे में पता है, तो सारी गोपियाँ यशोदा के पास आके कंप्लेन करती थी और कहती थी कि देखो तुम्हारा लाला ये हमारे घर में आके चोरी करता है, और इस तरह से उलाहने देके जाती थी। और कई बार उन्होंने कृष्ण को पकड़ने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुए। तो मैया ने पूछा लाला से कि हे लाला, तू दूसरों के घर में जाके क्यों खाता है, हमारे घर में कोई कमी है क्या, तो हमारे घर में क्यों नहीं खाता। तो कृष्ण ने जवाब दिया, मैं घर पे बैठ के नहीं खाना चाहता, कुछ कमा के खाना चाहता हूँ। तो कई लोग कई बार हमेशा सोचते नहीं नहीं मेरे को नहीं चाहिए, मेरे पिता की प्रॉपर्टी है, मैं खुद स्वयं बनना चाहता हूँ, अपने पैर पे खड़ा रहना चाहता हूँ। तो यशोदा माई थोड़ी विचलित हो गई, बोले ये क्या बोल रहा है, इतना सारा माखन हमारे घर पे निकलता है, क्योंकि नंद बाबा कौन है, नंद बाबा नंद गांव के राजा है, और उनके घर पे कितने गायें थी, 9 लाख गाय थी। तो उस 9 लाख गायों का जो दूध निकलता था, ऐसा वर्णन आता है कि उसमें कुछ पद्म गंधा गाय थी, तो वह 9 लाख गायों का दूध 1 लाख गायों को पिलाया जाता था, 1 लाख गायों का दूध 10,000 गायों का पिलाया जाता था, फिर 1,000, इस तरह करके जो 8 स्पेशल काउस थी उनका दूध 7 गायों का एक को पिलाया जाता था, और उसका जो दूध निकलता था वह भगवान श्री कृष्ण के लिए यूज होता था। तो यशोदा माई जो है उनका हमेशा यही था कि भाई भगवान जो है, कृष्ण जो है, वो अच्छे से अच्छी वस्तु प्राप्त करें, ये उनकी भावना है। तो यशोदा माँ वो क्या चाहती है, भगवान कृष्ण के लिए फर्स्ट क्लास, तो इसके लिए इतने सारी गायों का उनको दूध पिलाया जाता है। तो यहाँ पर शिक्षा हमें ये लेनी चाहिए कि भगवान कृष्ण के लिए अगर कोई भी काम हमें करना है तो फर्स्ट क्लास करना है, बेस्ट। भगवान को अगर कुछ अर्पित करना है तो बेस्ट करना है, नहीं तो क्या होता है कि बाकी सब चीज हम करते रहते हैं और उसमें से जो थोड़ा बच जाता है वो चंदे के रूप में दे देते हैं कि ये लेके जाओ। जैसे प्रभु बता रहे थे उस दिन कि हम जब भगवान के सामने जाते हैं तो अपना पर्स निकालते हैं तो ढूंढते हैं कि सबसे छोटा कॉइन कौन सा है, और वो कॉइन निकाल के फिर हम उसको डाल देते हैं, और फिर घंटी बजाते हैं भगवान को, कहते हैं भगवान आ गया मैं, अब कुछ दे मेरे को। तो इस तरह की हमारी भावना रहती है, और धर्म का काम में जो बच जाए वो दे देते हैं। तो एक बार एक उदाहरण आ रहा था, गौरव प्रभु बता रहे थे कि कई बार कुछ ऐसे पंडित लोग आते हैं जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है लेकिन तुम्हारे घर आए पूजा करवा रहे हैं, तो तुमसे पूछते हैं कि भैया तुम्हारे पास फूल है भगवान को देने के लिए, यहाँ तो वैसे भी फूलों की कमी है, तो फूल मिलता नहीं है, तो बोला फूल है, तो बोला नहीं फूल तो नहीं है हमारे पास, तो बोलते ठीक है पुष्प भावे अक्षत चावल का एक दाना चढ़ा दो, वो स्वीकार कर लेंगे। फिर पूछते हैं भगवान के लिए धोती है अच्छी सी, तो धोती नहीं मिलती, धोती नहीं है, तो बोलते ठीक है कोई बात नहीं, वस्त्र भावे सूत्रम एक धागा दे दो, हो जाएगा काम तुम्हारा। तो बता रहे थे कि भगवान के लिए जब आता तो इस तरह करते हैं, लेकिन जब हमारे लिए आते तो हम कभी कहते हैं कि जींस भावे लंगोटम, जींस नहीं है एक लंगोट पहन के घूमो, नहीं हमारे लिए परफेक्ट, क्या उसको क्या बोलते हैं, कौन सा काउबॉयज या लेविस पता नहीं कौन सा जींस है, इतना महंगा 7-8-10 साल तक फटेगा नहीं, धोने की भी जरूरत नहीं, उसको पहन पहन के घूम रहे हैं हम लोग। तो लेकिन जब भगवान को देने की कोई बारी आती है, जैसे एक बार एक व्यक्ति, मैंने पहले भी कहा है लेकिन आगे दिमाग में तो बता रहा हूँ, ज्योतिषी के पास गया और कहा कि मेरे जीवन में शनि का प्रकोप है, तो ज्योतिषी ने उसको बोला अच्छा प्रकोप है कोई बात नहीं, एक यज्ञ करा देंगे, अच्छा यज्ञ होता है और तुम्हारा शनि की जो सारसती वो खत्म हो जाएगी, लेकिन 500 रुपए लगेंगे यज्ञ के। तो कहने लगा यार 500 रुपए तो नहीं है मेरे पास। तो फिर ज्योतिष ने कहा कि ठीक है 500 नहीं तो कोई बात नहीं, एक हाफ यज्ञ होता है 250 रुपए में होता है, वो करवा लेंगे। तो बोला 250 रुपए भी नहीं है मेरे पास। तो बोला अच्छा कोई बात नहीं, शनि को एडजस्ट करना है ना, अपने को आता है कैसे करने का, शनि को एडजस्ट करेंगे। एक मिनी यज्ञ होता है 100 रुपए का, वो मिनी यज्ञ करवा देंगे, 100 रुपया दे दे। तो बोला यार लेकिन 100 रुपए भी नहीं है मेरे पास। तो बोला अच्छा ठीक है 50 है क्या, बोला 50 भी नहीं है, 25 रुपए है, बोला नहीं 5 रुपए है, वो भी नहीं है, तो यार 1 रुपया है क्या, बोला 1 रुपया भी नहीं है, 54 है क्या, बोला 54 भी नहीं है। बोला यार जब तेरे पास 54 भी नहीं है तो शनि भी तेरा क्या बिगाड़ लेगा। तो जब देने की कोई भावना ही नहीं हमारे में, तो कितना भी प्रयास करो भगवान मांग मांग के थक जाएंगे। एक बार अभी जैसे आज अष्टमी है, दुर्गा पूजा चल रही है, एक काली का बहुत बड़ा भक्त था, ये रेलेवेंट है, आ गया दिमाग। तो गया उनको और कहा माँ मुझे कुछ दे दे, माँ शेरों वाली। तो जाके मांगने लगा माँ से, तो माँ ने कहा ठीक है चल दे देता हूँ। तो उसने प्रॉमिस किया कि अगर तुम मुझे कुछ दोगी तो मैं तुम्हें एक भैंसा चढ़ाऊंगा। तो माँ ने ठीक है भैंसा चढ़ाएगा चलो ठीक है, तो दे दिया उनको। फिर थोड़े टाइम के बाद देखा माँ ने कि वो आ ही नहीं रहा है, तो उसने उसको सपने में आके बुलाया कि किधर है भाई तू, आ तो सही मंदिर में। तो मंदिर में बोला तूने कुछ प्रॉमिस किया था भैंसा देगा, क्या हुआ। तो बोला नहीं माँ वो भैंसा तो नहीं दे सकता, ठीक है बकरी दे दूंगा। तो बोला ठीक है बकरी दे दे चल कोई बात नहीं। तो बकरे को देने के लिए चला गया, वापिस नहीं आया। वापिस माँ उसको बुलाई कि अरे किधर गया बकरी नहीं दिया। तो बोला माँ प्रॉब्लम ऐसा है कि बकरी भी एक्चुअली अवेलेबल नहीं है, मैं काम करता हूँ तंगी लगी हुई है, रिसेशन चल रहा है, एक बिल्ली दे दूंगा। तो माँ ने बोला ठीक है कुछ तो दे यार कम से कम, बिल्ली दे दे। तो बिल्ली देने के लिए थोड़े टाइम के बाद गया तो बिल्ली भी नहीं। तो माँ ने सामने से कहा चूहा ही दे दे यार, तू बिल्ली भी नहीं दे सकता, कम से कम चूहा तो एक अर्पण कर कुछ तो कर। तो बोला चूहा भी नहीं कर सकता। तो दूसरी बार फिर बुलाया और कहा माँ ने कह रहे तूने चूहा देने की बात की थी, कम से कम एक चूहा तो दे दे। तो बोला माँ चूहा नहीं दे सकता। तो माँ ने कहा ठीक है मक्खी तो दे दे कुछ ना कुछ। तो बोला तुम्हारे आजू बाजू में इतनी मक्खी उड़ रही है पकड़ लो ना, मुझसे क्यों मांग रही हो। तो देने की कोई इच्छा ही नहीं है। तो जब भगवान को देने की कोई बारी आती है तो कई बार गाड़ी चला चला के गाड़ी घस जाती है, हजारों किलोमीटर खत्म होके एकदम पूरा वेयर एंड टेयर उसका हो गया, उसके बाद बोलते चलो अभी इस्कॉन को दान में दे दो, ये लोग अपना बुक डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करेंगे, संकीर्तन वैन बनाएंगे इसको, उनको दे दो। और कई बार ऐसा है कि जब जमीन में भूत प्रेत लगा होता है तो बोला ठीक है इस्कॉन को दे दो, वो लोग भूत भगाने में माहिर है, कीर्तन करेंगे रात भर 24 घंटे 24 आवर कीर्तन और भूत को भगा देंगे। जैसे अगर आपने अभयचरण सीरियल देखा है उसमें भी आपने देखा रहेगा प्रभुपाद को किसी ने भूताहा बंगला दिया था और प्रभुपाद जी ने भूत भगाया था। तो कई बार लोगों की भावना होती है कि ये भूत भगाने वाले हैं, और कई लोग तो उससे एक स्टेप आगे होते हैं, कहते हैं ये लोग तो भूत ही जैसे लगते हैं, ये लोग का हेयर स्टाइल और सब कुछ अलग है, एकदम विशेष विशेष प्रकार के लोग है, ये भूतों जैसे ही लगते हैं, इनको दे दो। एक बार गौरांग प्रभु ग्रैंड रोड स्टेशन से उतर के चौपाटी मंदिर की तरफ जा रहे थे, तो वहां पर जब जा रहे थे तो भगवा कपड़ा में था, और कई छोटे बच्चों ने बॉम्बे में एक एडवर्टीजमेंट देखा है, चलेगा बजा के देखो, अगर आपने देखा रहेगा एक रेडियो मिर्ची का एडवर्टीजमेंट आता था, उसमें एक जाड़ा व्यक्ति है जो भगवा कपड़ा और टकला है और वो बजा रहा है, बजा के देखो। तो एक बार एक ब्रह्मचारी थे किसी व्यक्ति के घर पे गए और उस बच्चे ने जैसे ही दरवाजा खोला और तुरंत देख के खुश हो गया, बोला पापा, बोला क्या हुआ, बजा के देखो। पापा उसको अंदर लेके गए, बहुत खराब लगा, बोला ये देखो कैसा कैसा सीख रहा है एडवर्टीजमेंट देख के। तो अंदर लेके गए, बोला तेरे को बजा के दिखाऊं क्या। तो फिर समझाया तो बोला ठीक है। सेकंड टाइम प्रभु जी आए तो वापस उसे कहा पापा प्रभु जी को देखो। तो उस तरह से जब वो गए तो माँ, बच्चा छोटा सा था माँ के साथ जा रहा था, तो बच्चे ने पूछा माँ ये कौन है। तो माँ ने कहा बेटा ये भूत है। तो गौरांग प्रभु सोचने लगे, बोले ये कैसा सिखा रही है, मतलब ऐसे बच्चों को अगर शिक्षा देगी तो आगे जाके क्या होगा। तो जब देने की बारी आती है तो हमारी कोई इच्छा ही नहीं है देने के लिए। तो लेकिन यशोदा माता की ऐसी इच्छा नहीं है। यशोदा माता कहती कि जो बेस्ट है वो कृष्ण को दो, नहीं तो हम क्या करते हैं मावा निकाल लेते हैं और बाकी जो बचता है वो दे देते, वो लेके जाओ। कोई भीख मांगने आता है तो अपने करदान में सबसे नीचे जो बासी रोटी होती है वो निकाल के भिखारी को दे देते हैं। तो भगवान को अगर देने की जब बारी आती है, कहने का तात्पर्य है कि हमको उनको बेस्ट देना चाहिए। तो कई लोगों को हम प्रचार करने के लिए जाते हैं और कहते हैं कि भगवान की भक्ति में लोगों को तो अभी टाइम नहीं है, जब मैं बूढ़ा होऊंगा तब मैं भगवान की भक्ति में आऊंगा, अभी मेरे पास मत आओ, अभी टाइम नहीं है मेरे पास। तो भगवान को कोई चीज फ्रेश देनी चाहिए, अगर तुम किसी के बर्थडे पार्टी में जा रहे हो तो उसको फ्रेश फूल देनी चाहिए, गुलाब, नहीं तो 20 दिन पुराना गुलाब एकदम उठा के जो पूरा एकदम पता नहीं किस तरह से उसकी हालत हो गई है वो जाके दोगे, तो सबसे पहले तो ये समझने की आवश्यकता है कि वो गुलाब है कि नहीं। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ क्वालिफिकेशन टू अंडरस्टैंड कि 20 दिन पुराना गुलाब गुलाब है कि नहीं है। तो वो दोस्त बोलेगा यार ये क्या म्युनिसिपैलिटी कचरा पेटी में से उठा के लाया क्या, ये क्या दे रहा है मेरे को। तो जब हम लोग एकदम जैसे शंकराचार्य कहते हैं अंगम गलितम पलितम मुंडम दर्शन विहीना जातम टुंडम वृद्धो यापि गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम, कि जब हम एकदम बूढ़े हो जाएंगे अंगम गलितम, एक जो मोमबत्ती होती है फ्रेश बहुत अच्छी लगती है लेकिन गल जाती है तो कैसी लगती है, वैसा हमारा शरीर होता है और हमारे जो बाल है सारे गिरने लगते हैं, जो 32 खिलाड़ी उनका विकेट आउट हो जाता है, और ऐसी अवस्था में हम सोचेंगे कि भगवान की भक्ति करेंगे तो आंखों से दिखाई नहीं देगा, कानों से सुन नहीं सकेंगे, पैरों से चलने को नहीं होगा, तो क्या हम हाथ उठा के हरे कृष्णा करेंगे, हाथ भी ऊपर नहीं आएगा, तो जो हाथ ऊपर नहीं जाएगा वो नीचे जाएगा और चार पैर पे हम चलेंगे फिर अगले जन्म में। तो इस तरह की सिचुएशन में हमको क्यों आना है, भगवान की भक्ति तभी करनी चाहिए एकदम फ्रेश। इसलिए प्रहलाद महाराज ने क्या कहा, कौमारम आचरी प्रज्ञ, सर्वश्रेष्ठ जो है वो सब हमको भगवान को देना चाहिए, नहीं तो जैसे समय भी है, समय जो है वो भी हमको भगवान के लिए देना चाहिए सर्वश्रेष्ठ, नहीं तो हम लोग क्या करते हैं कि भगवान को देने के लिए रात का समय है बाकी सब काम हम लोग कर लेते हैं। तो कई बार लोग इस तरह से कहते हैं, ये शिक्षा की बातें हैं और हम सबको समझने के लिए एकदम उपयुक्त है, हम कहते हैं कि कृष्ण मेरे जीवन में प्रधान है, कृष्ण इज टॉप प्रायोरिटी इन माय लाइफ, नंबर वन प्रायोरिटी इन माय लाइफ, कृष्ण मेरे जीवन में प्रधान है, लेकिन मैं जप कब करता हूं, रात को 9:30 बजे मैं शुरुआत करता हूं जप की, रात को 9:30 बजे से, और उसके बाद मैं जप करना शुरू करता हूं क्योंकि मेरे को लगता है कि जब मेरा दुनिया भर का सारा काम हो जाए पूरे दिन में, मन मेरा शांत हो जाए और उसके बाद मैं हाथ में माला लेके बैठूंगा बिस्तर लगाने के बाद, और उस बिस्तर को देखते देखते मैं इस तरह से गिरूंगा जपते जपते कि ओहो क्या मजा आएगा, सोचो। तो इस तरह से धराशायी होने के लिए हम भगवान के लिए काम नहीं कर सकते। तो अगर हम कहते हैं तो कोई ये विचार करे कि नहीं ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा, तो इसलिए भी हम कल चर्चा कर रहे थे कि सुबह जल्दी उठ के जप करना चाहिए, और कई भक्त ऐसा करते हैं और मेरे जैसे जो मोटी बुद्धि के लोग होते हैं वो इसको फॉलो नहीं करते हैं, तो मुझे बड़ी जरूरत है कि इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि बेस्ट जो है वो भगवान श्री कृष्ण के लिए। तो कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि वो दिन कब आएगा जब मैं भगवान की बांसुरी सुनूंगा, भगवान का वेणुवादन सुनूंगा। कई लोग ऐसा हमको मिलते हैं प्रचार के लिए जाते हैं, तो वो भगवान की, भगवान को देखने में और भगवान को सुनने में बड़ा, मतलब भगवान के बारे में सुनना नहीं चाहते लेकिन ऐसा सोचते हैं कि भगवान की वेणुवादन मुझे सुनाई देगी, बांसुरी मुझे सुनाई देगी। तो गौरव प्रभु कह रहते हैं कि भगवान का वेणुवादन बहुत दूर है, पहले अलार्म की घंटी सुननी पड़ती है। जब अलार्म का स्वर हमको मीठा लगना लगे तब समझने का कि हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, नहीं तो क्या होता है कि रात को अंधेरे में हाथ पैर मार के कहीं ना कहीं से अलार्म का गला दबा देते हैं और कहते कह रहे नालायक चुप, बहुत गलत टाइम पे बजा तू, इस टाइम पे क्यों बजा। तो इस तरह की अगर सिचुएशन होगी तो क्या हमें भगवान का वेणुवादन सुनाई देगा। सो इसके लिए जरूरत यह है कि हम भगवान के लिए कोई भी कार्य करें तो नंबर वन श्रेष्ठ होना चाहिए। तो यशोदा अर्थात वो जो जीवन के प्रत्येक पहलू में केवल भगवान श्री कृष्ण को ही प्रधान माने और भगवान श्री कृष्ण के लिए उत्कृष्ट व्यवस्था करे। तो वो क्या की कि ये जो दूध जो इतनी सारी गायों से निकला था पद्मगंधा से, उसको वो उबालने के लिए रखती है भगवान के लिए माखन बनाने के लिए। और ये जो गोलोक वृंदावन में जो सारे चीज है ये सब चिन्मय है, वहाँ के कण चिन्मय है, वहाँ की लता पता चिन्मय है, वहाँ के पत्थर चिन्मय है, वहाँ की मिट्टी चिन्मय है, हर चीज भगवान की लीला में चिन्मय है, चिन्मय अर्थात सब में जान है। तो ये जो दूध जो है ये भी चिन्मय है। तो माता यशोदा ने क्या किया कि उस दूध को गर्म करने के लिए उन्होंने उसको सिगड़ी पे रखा, चूल्हे पे रखा, और भगवान कृष्ण उठ के आए और माता से बताते कि माता जो था वो दूध बिलो रही थी दूसरा सा, तो उनके जो हाथ थे उसके अंदर जो कंगन थे वो बज रहे थे, तो कंगन जो है वो भी चिन्मय है। उन्होंने क्या सोचा कि माता यशोदा क्या कर रही है, भगवान का कीर्तन कर रही है, वो दूध निकालते निकालते वो कृष्ण के बारे में सोच रही है, उसके बारे में चिंतन कर रही है। इसलिए हमारे जो सन्यासी होते हैं उनको त्रिडंडी देते हैं कि उनका जो मन था वो क्या था, भगवान में लगा था, उनकी वाणी थी वो भगवान में लगी थी और उनकी जो क्रियाएं थी वो भी भगवान की सेवा में लगी थी। तो मन बुद्धि और क्रिया ये जो वाणी, मन, वाणी और क्रिया, ये जो तीनों है, इसको भगवान में जो लगता है वो सच्चा सन्यासी होता है। तो भगवान कृष्ण आए तो ये कंगन बज रहे थे, तो कंगन ने क्या सोचा कि भगवान कृष्ण का कीर्तन हो रहा है और इधर मृदंग करता कुछ है नहीं, तो हम लोग ही बजने लगते हैं। तो वे आपस में बजने लगे और ध्वनि पैदा कर रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण वहां पर आए और मैया से कहने लगे कि मुझे तुम्हारा दूध पीना है। तो मैया यशोदा ने क्या किया, कृष्ण को अपने गोदी में रखा और उसको अपना स्तन्यपान कराने लगी, उनको दूध पिलाने लगी। तो ये जो दूध चूल्हे पे उबल रहा था, उसने सोचा कि अरे ये कृष्ण अगर मैया यशोदा का दूध पी जाएंगे, और कृष्ण कौन है, अनंत है, उनकी लीलाएं अनंत है, और भगवान के लिए जो दूध निकलता वो भी अनंत है। तो बोला कि ये अगर ऐसा दूध पी लेंगे तो भगवान छोटे से हैं, इनका तो पेट भर जाएगा, फिर मेरा क्या होगा, मेरा जो जीवन है वो भगवान की सेवा में नहीं लगेगा, एकदम निरर्थक हो जाएगा, तो ऐसे बिना सेवा वाले जीवन से क्या लाभ। तो यहाँ से एक और शिक्षा की ये आवश्यकता है कि हमारे जीवन में जब तक हम सेवा नहीं करते, हमारे जीवन का कोई लाभ नहीं है। तो सोचता है कि अगर भगवान कृष्ण पी लेंगे दूध तो मेरा क्या होगा, तो इससे अच्छा तो ये है कि मैं आत्महत्या करता हूँ। तो दूध ने क्या करना शुरू किया, आत्महत्या। और वो आत्महत्या करने का स्टाइल क्या, दूध का, वो उस तपेले में से उबल रहा था, उफन रहा था, उफन के बाहर आके वो जो सिगड़ी में जो आग लगी थी उसके अंदर सती बनने की कोशिश कर रहा था, उस आग के अंदर वो गिर रहा था। तो उससे जो आवाज निकली, उससे यशोदा माता ने सोचा कि अरे ये दूध जो है ये भगवान की सेवा में प्रयुक्त होने वाला है और इतना इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए मेरा कर्तव्य है कि इस दूध को मैं बचाऊं। तो कई बार भक्तों के जीवन में ऐसी चीजें आती है कि कई बार हमको सोचना पड़ता है कि ये दो सेवा है। दो सेवा क्या थी, वो एक माता यशोदा भगवान को दूध पिला रही थी, खुद पर्सनल सेवा कर रही थी भगवान की, और दूसरी एक ऐसी वस्तु थी जो भगवान की सेवा में लगने वाली है। तो इन दोनों के बीच में मदर यशोदा जो थी उनको डिसीजन लेना था कि मैं क्या करूं। तो कई बार भक्तों के जीवन में भी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि किसी मेरे जीवन के क्षण में मेरे को दो सेवाओं के बीच में डिसीजन लेना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, मैं चैंटिंग करूं या सेवा करूं जाके, या मैं गुरु महाराज की पर्सनल सेवा करूं या जो दूसरा कार्य है प्रचार का वो करूं। तो इस तरह की जो कुछ सेवा होती है उसके बीच में हमारा द्वंद्व चलते रहता है। लेकिन हमारे साथ तो क्या होता है कि हम क्या सोचते हैं कि प्रसाद खाऊं या थोड़ी देर जाके सो जाऊं, हमारा जो सिलेक्शन है ऐसी सेवाओं के बीच में होता है कि प्रसाद खाऊं या जाके सो जाऊं। तो इस तरह का जो कई बार, तो यशोदा ने सोचा कि मैं क्या करूं, फिर यशोदा ने ये सोचा, आचार्य ऐसा बताते हैं कि यशोदा ने सोचा कि मेरा दूध तो मेरे पास है ही है, वो तो मेरे पास रहेगा, लेकिन वो दूध जो चूल्हे पे जल रहा है, उबल रहा है, वो गिर जाएगा अगर मैं उसको बचाने नहीं गई, तो इम्पोर्टेंट क्या है अभी उसको बचाना। तो भगवान ने जो बुद्धि दी है उस बुद्धि का थोड़ा प्रयोग करके हमको सोचना चाहिए कि कौन सी सेवा कहाँ पर किस तरह से करनी चाहिए, ताकि उससे हमारा और हमारा जो ये मिशन है उसका भला होगा। नहीं तो कई बार क्या होगा कि हम अपने आप को मिशन के आगे रखते हैं और मिशन हमारे पीछे आ जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मिशन के साथ साथ मैं क्या ऐसी सेवा करूं कि जो मिशन को लेकर आगे बढ़ेगा। और जैसे कल हमारे सच्चिदानंद प्रभु है, उनके घर पे भक्ति वृक्षा चल रहा था, वो भक्ति वृक्षा छोड़ के प्रचार के लिए चले गए फूडलैंड में, वहां पर। तो उन्होंने भी डिसीजन लिया, भक्ति वृक्षा में ध्यान दूं कि वहां पर चले जाऊं मैं, तो वहां गए क्योंकि मूवमेंट को आगे बढ़ाना था। सो हमको इस तरह से इस दुविधा के बीच में ये लेना चाहिए। एक बार प्रभुपाद जा रहे थे और उनके पीछे पीछे उनके भक्त चल रहे थे, और प्रभुपाद ने जाते जाते देखा कि देखो ये बिल्डिंग कितनी अच्छी है, ये बिल्डिंग अगर हमारे पास होगी तो कितना अच्छा होगा। तो सबने कहा जय प्रभुपाद, यस प्रभुपाद। तो आगे बढ़े, फिर एक गार्डन दिखाई दिया, तो उस गार्डन को देख के बोले देखो गार्डन कितना सुंदर है, ऐसा गार्डन अगर हमारे पास होगा तो हम कितना कुछ कार्य कर सकते हैं। सबने कहा यस प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। प्रभुपाद आगे बढ़े, और आगे कुत्ता था, प्रभुपाद ने उस कुत्ते को देख के कहा कि देखो ये कुत्ता कितना अच्छा है, अगर ये हमारे मंदिर में हो तो कितना अच्छा होगा। सबने कहा यस प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। तो प्रभुपाद ने घूर के देखा, तो कुत्ते का क्या करोगे। तो सब भ्रमित हो गए, बोले अरे प्रभुपाद आपने कहा इसके लिए। तो प्रभुपाद ने कहा हम मूर्ख मत बनो, गुरु से अगर आदेश मिले तो निश्चित ही समर्पित हो जाओ, लेकिन सोचो कि आदेश क्यों मिला है, उस पर मनन करो। तो इसीलिए जो सेवाएं हैं हमें मनन करना चाहिए, सोचना चाहिए कि कौन सी सेवा करने से और किस प्रकार की सेवा करने से मैं भक्ति में आगे बढ़ूंगा और मेरा मूवमेंट जो है, मेरा मिशन जो है वो आगे बढ़ेगा। नहीं तो कई बार हम एक दूसरे से छुपाते रहते हैं हर चीज, और कुछ ना कुछ करते रहते हैं, सोचते हैं मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा। तो जो कोऑपरेशन की भावना है वो हमारे मन में आती नहीं है, तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो फिर क्या हुआ कि यशोदा दूध बचाने के लिए गई तो कृष्ण को बहुत बुरा लगा और कृष्ण ने सोचा कि मैया ने मुझे छोड़ दिया, मैं जीवन में प्रधान होना चाहिए, भगवान ये बताना चाहते थे, और मुझे छोड़ के उस दूध को बचाने के लिए गई। तो उनको गुस्सा आया, उन्होंने एक लकड़ी उठा ली और जो मटका था जिसमें से वो दही बिलो रही थी उसको तोड़ दिया भगवान ने, और तोड़ के सारा दही माखन उधर बिखर गया और बिखर के वो सब चलने लगे। और बाद में भगवान ने क्या किया कि वो माखन वाखन सब बाहर लेके गए और बंदरों को खिलाने लगे, अपने दोस्तों को खिलाने लगे। तो परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज बताते हैं कि ये जो बंदर है ये साधारण बंदर नहीं है, ये वो बंदर है जिन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी को की सहायता की थी जब वो आए थे रावण से युद्ध करने के लिए। तो ये सारे बंदर जो थे वो वानर सेना के रूप में आए थे। तो भगवान ने, रामचंद्र जी ने उन बंदरों को कहा था कि अभी मेरे पास सुविधा नहीं है, अभी व्यवस्था का अभाव है, तो अगले जन्म में मैं आऊंगा कृष्ण के रूप में, तब तुम सब आ जाना और जितना कुछ तुमने मेरे लिए किया है वो सब सूद के साथ तुमको वापस दूंगा, इंटरेस्ट के साथ दूंगा, क्योंकि क्योंकि कई बार भगवान रामचंद्र ने देखा कि कई बंदर थे जो राक्षस के साथ युद्ध करते करते किसी ने अपना हाथ तोड़ दिया, किसी ने अपने पैर तोड़ दिए। एक बंदर को देखा रामचंद्र जी ने जिनके दो हाथ और दो पैर टूटे हुए हैं, और वो बंदर रामचंद्र को कहने लगा कि जय श्री राम, अभी मैं जाऊंगा और लंका पे आक्रमण कर दूंगा। तो इस तरह की अवस्था को देख के श्री रामचंद्र जी के अश्रु निकल आए और वो कहने लगा कि इन वानरों ने मेरे लिए कितनी सेवा की है, तो मैं इनका ऋण चुकाऊंगा। और भगवान श्री रामचंद्र जी जो है वो कौन है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और इतनी शक्ति, इतना बल, अपार शक्ति उनमें थी, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो वानरों से कंसल्टेंसी ले रहे हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी महाराज श्रीमद् भागवतम में कहते हैं, किं चित्रम अच्युत तथैव शेष बंधो दाशेषु अनन्य शरणेषु यदात्म सत्वम् यो रोचयत सह मृगे स्वयं ईश्वराणाम् श्रीमद् किरीटतट पीड़ित पाद पीठ। वो कहने लगे किम चित्रम अच्युतम तथैव अशेष बंधो, कि ये रामचंद्र जी कौन है, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं है, और वे क्या कर रहे हैं, अशेष बंधो, वे लोगों को अपना मित्र बना रहे हैं। और किस तरह के लोगों को अपना मित्र बना रहे हैं, यह रोचित सह मृगय, मृगय मतलब होता है जानवर, वो जानवरों को अपना मित्र बना रहे हैं। और वो कोई क्वालिफिकेशन नहीं देखते, सिर्फ एक क्वालिफिकेशन देखते, क्या, दाशेषु, कि कोई अगर मेरा दाशेषु अनन्य शरणेषु, कोई मेरी अनन्य शरण में आ जाए। तो अगर विभीषण भी उनकी शरण में जब आ गया तो कई लोगों ने उनको कहा कि नहीं राम, ये रावण का भाई है और दुश्मन का भाई भी हमारा दुश्मन होता है, इनको मत लो। तो भगवान ने कहा कि अगर विभीषण आके मेरी जान भी मांगेगा तो मैं दे दूंगा, पर क्योंकि वो मेरी शरण में आया मैं उसका साथ दूंगा। तो किसी ने भगवान रामचंद्र जी से कहा, जब युद्ध खत्म हो गया तो भगवान ने क्या किया, विभीषण को लंका का राजा बना दिया, लंकेश। तो हनुमान जी ने मजाक में भगवान रामचंद्र से पूछा कि भगवान अभी आपने विभीषण को तो लंकेश बना दिया, लंका का राजा बना दिया, सोचो अगर अभी रावण आ जाए और अगर आपसे मांगे तो आप क्या करोगे। तो कहा कि अभी मैंने विभीषण को लंका का राजा बना दिया है, तो वो लंका तो मैं रावण को नहीं दे सकता, लेकिन अभी अगर रावण आ जाए तो मैं अयोध्या उसे दे दूंगा। भगवान श्री रामचंद्र जी की, तो ऐसे रामचंद्र जी है कि जिनके जिनके पैरों में बड़े बड़े देवताओंगण अपना जौजल्यमान मुकुट जो है वो लाके उनके पैरों में रखते थे, पीड़ित पाद पीठ उनके पैरों में रखते थे और उनके सामने खड़े रहते थे। जब ब्रह्मा जी भ्रमित हुए तो भगवान श्री कृष्ण ने अनेक ब्रह्माओं को बुला दिया, ब्रह्मा जी को बुला लिया, और कई ब्रह्मा थे जिनके चार सर थे, आठ सर थे, 16 सर थे, 32 सर थे, 64 सर थे, हजारों सर थे, इस तरह के ब्रह्मा जी आ गए और वे सब आके अपना जो मुकुट था वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रखने लगे एक एक करके। और ये सीन ब्रह्मा जी ने देखा। तो वही जो रामचंद्र जी है जिनके चरणों में इस तरह के बड़े बड़े देवताओं का आके अपना मुकुट रखते हैं, वो क्या कर रहे हैं, बंदरों से दोस्ती कर रहे हैं, उनको अपना एसोसिएट बना रहे हैं, उनके साथ घूम रहे हैं, उनसे कंसल्टेंसी ले रहे हैं, उनको पूछ रहे हैं कि सीता माता को कैसे ढूंढना चाहिए, अभी कौन से दिशा में जाना चाहिए, सुग्रीव तुम बताओ, अंगद तुम बताओ, हनुमान तुम बताओ, नल नील तुम बताओ, जामवंत आप बताओ, इस तरह से वो भगवान प्रश्न पूछ रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति समाज में जो प्रतिष्ठित है, जिसका समाज के अंदर रुतबा है, जिसका कुछ पावर है वो ऐसा सब करेगा क्या? जैसे मैं एग्जांपल पहले भी कई बार दिया है कि जैसे शेख खलीफा है, वो समझो एमिरेट्स पैलेस में अगर उसका कोई बड़ा मीटिंग हो रही है और उस मीटिंग में सारे के सारे बड़े बड़े डेलीगेट्स आए हैं बहुत अलग अलग कंट्री से, टाई कोट शर्ट सब पहन के एकदम, और उस मीटिंग में वो जा रहे हैं और साथ में एक बंदर को लेके जा रहे हैं, तो सारे के सारे लोग राउंड टेबल पर बैठे हैं कॉन्फ्रेंस में और पास में एक बंदर भी बैठा है, तो कोई पूछेगा कौन है ये, तो कहेंगे शेख साहब ये मेरा एसोसिएट है। तो क्या करेगा, मुझे कंसल्टेंसी देगा। कंसल्टेंसी कोई लेगा क्या? लोग बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट रद्द करो, ये किस तरह से व्यवहार कर रहा है, चलो यहाँ से वापस। लेकिन वही रामचंद्र उनसे कंसल्टेंसी ले रहे हैं और उनको कह रहे हैं हम किस तरह से कर, उन पर डिपेंड हो रहे हैं। तो इस तरह से इन्होंने जितनी सेवा की थी भगवान रामचंद्र की, तो उसका कर उतारने के लिए भगवान रामचंद्र जी यदा कदा उनको माखन खिलाते थे, वो भी अपने हाथों से। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजो को शाम, के बंदरों का भी कितना भाग्य है। तो इस तरह से चल रहा था, तो जब वो बंदरों को माखन खिला रहे थे तो पीछे से यशोदा माई आई और देखा कि क्या कृष्ण ने कर लिया, और लकड़ी लेके उसको पकड़ने के लिए आई। तो जैसे ही आई तो बंदर ने देख लिया और बंदर ने सिग्नल दिया और भगवान कृष्ण भागने लगे। तो भगवान आगे आगे भाग रहे हैं और उसके पीछे पीछे यशोदा माता भाग रही है और उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन यशोदा माता इतना तेज नहीं भाग पा रही थी कृष्ण से, और कृष्ण बहुत जोर से आगे भाग रहे हैं और यशोदा माता उसके पीछे पीछे भागने का प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण को पकड़ नहीं पाई। तो वर्णन आता है कि उस श्री कृष्ण को योगी और तपस्वी जो लोग हैं वो अपने मन बुद्धि या किसी भी चीज से पकड़ नहीं सकते, उसके पीछे यशोदा माता जो एक गृहिणी है वो भाग रही है, और बहुत मेहनत उन्होंने की, पूरे पसीना आ गया उनको, उनके सिर पे जो फूल थे वो सोचने लगे अरे भगवान इनसे डर के भाग रहे हैं, हम इनके सिर पे बैठे हैं, हमें को इनको पैरों में होना चाहिए, एक एक करके गिरने लगे। तो फिर बाद में वर्णन आता है यहाँ पर परामृष्टम अत्यंत तो द्रुत्य गोपिया, अत्यंत तो द्रुत्य मतलब होता है बहुत जोर से एकदम, अत्यंत मतलब बहुत तेज, द्रुत्य मतलब द्रुतगामी एकदम तेज भाग के फास्ट ट्रेन की तरह, उन्होंने क्या किया पकड़ लिया श्री कृष्ण को। तो यशोदा माता ने भगवान श्री कृष्ण को पकड़ लिया और भगवान श्री कृष्ण यशोदा माता से पराजित हो गए। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो हमारे आचार्य बताते हैं कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो होता है वो अपने जीवन में विजयी होना चाहता है। हम लोगों को यही शिक्षा मिली है हमारे स्कूल में कॉलेज में, दैट वी वांट टू बी नंबर वन, जहां पे भी जाना चाहे वहां पे नंबर वन। मैं ब्रॉन्ज मेडल जीत रहा हूं मजा नहीं आ रहा है, गोल्ड मेडल चाहिए मेरे को। तो गोल्ड मेडल जीतते हैं तो उसका बहुत चर्चा होता है। तो हर चीज के अंदर पराजित होने की किसी की इच्छा नहीं होती। बचपन से ये जो हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली है और बाकी परिवार और स्वजन और जो भी हमारे फ्रेंड्स है, सबसे हमने एक ही चीज सुना है और इतना हमारे दिमाग में ठूस ठूस के भर दिया गया है कि जीवन में अगर हमें कुछ करना है तो बिल्कुल नंबर वन, और वो भी कैसे, सबको पीछे करके हमें ऊपर आना है और सबको पराजित करना है। तो ये जो स्पर्धात्मक भावना जो है वो हमारे दिमाग में कूट कूट के भर दी गई है, और इसके लिए हम क्या करते हैं कि कई बार ऊपर आने के लिए, नंबर वन बनने के लिए कई चीजों के साथ हम गलत कार्य करते हैं, कई चीज हम छुपाते हैं, कई बार किसी को बताते नहीं है, और इस तरह से कई बार हम बहुत प्लॉट करने का प्रयास करते हैं कि मैं कुछ ऐसा करूंगा जिसकी वजह से मैं ऊपर आ जाऊंगा और नंबर वन बन जाऊंगा। तो ये भावना हम लोगों के बीच में होती है, लेकिन यहाँ पर ये भावना हमको देखने के लिए नहीं मिलती। यहाँ पे क्या हो रहा है कि भगवान कृष्ण क्या किए, माता यशोदा से पराजित हो गए, वह हार गए। तो पराजित होने के लिए भगवान तैयार हो जाते हैं और उनमें उनको आनंद आता है, और हम अगर किसी से पराजित हो जाए तो हमको आनंद नहीं आता। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो हमारे आचार्य बताते हैं कि हमारे जीवन में हमारे को भय होता है, कई प्रकार का भय होता है, भोगी रोग भयम कुलच्युति भयम वृत्ते निपालात भयम माने दैन्य भय माने दैन्य भयम रूपे जराया भयम। तो इस तरह के कई भय होते हैं कि कोई बलवान अगर मुझसे आ जाएगा तो मेरा क्या होगा। तो कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं भागू इस रेस के अंदर, भागू और भागू तो ऐसा भागू कि पीछे दूर दूर तक अगर कोई दिखाई दे रहा है तो भी डर लगता है कहीं भाग के आगे नहीं निकल जाए। तो कोई दिखाई नहीं देना चाहिए, मैं भागू तो सिर्फ अपने आप को देखूं, और ऐसा सोचता हूं कि कोई भागते भागते अगर मेरे आगे निकल गया तो कैसे उसको पकड़ के पीछे खींचूं और पीछे डालो और खुद आगे भागूं। तो ये केकड़ा प्रवृत्ति है, प्रभुपाद जी इसको बताते हैं। तो कृष्ण भगवान तेज नहीं भाग रहे थे, वो भागते भागते यशोदा माई को चांस दिया तेज भागने का। परामृष्टम अत्यंत तो द्रुत्य गोपिया, उस गोपी ने, उस यशोदा माता ने क्या किया, दौड़ के तेज भगवान श्री कृष्ण को पकड़ लिया और परास्त कर दिया। तो इस संपूर्ण जगत में भगवान की इच्छा है और भगवान ने इस जगत का निर्माण किया है आनंद के लिए और आनंद का आदान प्रदान करने के लिए। और भगवान जिनकी आकांक्षा यह है कि कब ये जो जीव है ये मुझसे बंधेंगे और मुझे अपने प्रेम से पराजित करेंगे, तो प्रेम की शक्ति में बहुत बहुत बल है और भगवान चाहते हैं कि हम उनको पराजित करें अपने प्रेम से और अपने बंधन में बांधे। तो यशोदा माता ने अपने प्रेम से भगवान श्री कृष्ण को पराजित कर दिया। वे भगवान कृष्ण जो किसी से पराजित नहीं होते, मूर्तिमान भय स्वयं भगवान श्री कृष्ण से डर के भागता है और वह मूर्तिमान भय जिनको भगवान कृष्ण भयभीत कर रहे हैं वह मदर यशोदा माता यशोदा से भयभीत हो रहे हैं और उनसे डर के भाग रहे हैं। तो इसके लिए हमको समझना है कि भक्ति का अर्थ है पराजय। करुणा प्रभु यहाँ पर आए थे थोड़े दिन पहले, तब भी उन्होंने ये बात कही थी, भक्ति इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ बीइंग डिफीटेड, नॉट टू डिफीट अदर्स। भक्ति में मैं किसी को, तो ये जो स्पर्धा है भगवान इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। हम जब किसी से कंपटीशन करना शुरू करते हैं तो स्पिरिचुअल कंपटीशन तो होना चाहिए कि ठीक है मैं ऐसा भक्ति करूं कि दूसरे को इंस्पायर करूं और भक्ति करने के लिए, लेकिन अगर ऐसा मन में इच्छा है कि मैं भक्ति करूं और दूसरों को डिफीट करूं तो भगवान इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए भगवान अर्जुन से प्रेम करते थे और एकलव्य से प्रेम नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि एकलव्य में स्पर्धात्मक वृत्ति थी, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट थी। वह चाहता था कि मैं नंबर वन आर्चर बनूं, मैं नंबर वन धनुर्धर बनूं और मैं अर्जुन को हराऊं। इसलिए द्रोणाचार्य ने उनका अंगूठा भी मांग लिया था, लेकिन फिर भी उसकी जो स्मृतात्मक जो बुद्धि थी वो मानी नहीं और कंपटीशन करने लगी। सो वैष्णवास सर्व, वैष्णवास डोंट कम्पीट, वो कभी एक दूसरे से कंपटीशन में नहीं लगते, वो सेवा करना चाहते हैं। तो एक लव्य जब फिर भी कंपटीशन में और फिर भी बनना चाहता था, कर्ण की भी यही इच्छा थी एक्चुअली, तो जब उसने इतना महारथी हासिल कर दी, हालांकि द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा भी ले लिया था, तो कृष्ण को यह बात पता चला कि एकलव्य जो है वो कंपटीशन करना चाहता अर्जुन से। तो कृष्ण ने क्या किया, किसी को पता है कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण ने एकलव्य का वध कर दिया, भगवान श्री कृष्ण ने एकलव्य को मार दिया। आपको बात ये पता है? और भगवान किसको मारते हैं? राक्षसों को मारते हैं, दुष्टों को मारते हैं, अपने भक्तों को नहीं मारते। तो एकलव्य का वध कर दिया भगवान ने, और वो भी महाभारत के युद्ध में नहीं। एक्चुअली महाभारत के युद्ध में शुरू होने के पहले एकलव्य था और उसे भी चांस मिला था कि कहां पे ज्वाइन होना है, और वो कौरवों में जाके ज्वाइन होने वाला था, लेकिन भगवान कृष्ण ने उसको साइड में बुलाया और युद्ध के बाहर ही मार दिया, क्योंकि भगवान ने सोचा अगर युद्ध के अंदर मारूंगा तो फेमस हो जाएगा, तो बाहर मार दिया। तो हमको समझने की आवश्यकता है कि एकलव्य, कई लोग जो है इस समाज के अंदर कहते हैं कि नहीं एकलव्य के साथ बहुत बुरा हुआ, कर्ण के साथ बहुत बुरा हुआ, दुर्योधन के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन यह समझने की जरूरत है कि भगवान किसी के साथ बुरा नहीं करते, और भगवान सिर्फ राक्षसों को और दुष्टों को मारते हैं। और भगवान ने अगर एकलव्य को मारा है तो हमको समझना चाहिए कि वो कौन है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने यह कमेंट्री दी है और उसी के आधार पर हम ये बात कर रहे हैं। तो भक्ति का अर्थ है पराजय। तो अगर हम सोचे कि हम दूसरों को धक्का मार के नीचे गिराएंगे तो हमें समझना चाहिए कि हमको दिल्ली बहुत दूर है, हमको बहुत समय लगेगा। तो हमें इस दामोदर के महीने में भगवान दामोदर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, हे कृष्ण, कृपा करके मुझे ये प्रेरणा दो और मुझे शुद्ध बनाओ ताकि मेरे अंदर जो द्वेष की भावना है वो पूरी तरह से नष्ट हो सके और वास्तव में मैं हृदय के अंतःकरण से उल्लास के साथ मैं भक्तों का जो है उनकी सेवा कर सकूं और केवल मौखिक औपचारिक रूप से नहीं, वास्तव में हृदय के अंतःकरण से मैं भक्तों की सेवा कर सकूं, और अगर मैं सेवा नहीं कर सकूं तो जो भक्त सेवा कर रहे हैं कम से कम उनकी सहायता करूं, उनको हेल्प करूं, उनसे द्वेष न करूं। तो इस तरह की अगर हमारी प्रार्थना होगी तो वास्तव में हमें भगवान मिलेंगे और ये हमारे भक्ति के लिए बहुत बड़ी परीक्षा है। और इसके लिए कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे कोई भक्ति में अगर हमारे से आगे निकल जाए तो हम सोचते हैं अरे ये तो मेरे बाद में आया, मैं तो 20 साल से इधर हूँ, 20 साल से भक्ति करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको तो 3 साल हुए, ये आगे कैसे निकल गया? अरे भगवान तुमने नोट नहीं किया क्या डेट? मैं तुमको बताता हूँ मैं कौन से डेट में आया और ये कौन से डेट में आया। आपने ध्यान नहीं रखा, आप पक्षपात कर रहे हो, आप बराबर नहीं हो, अच्छा नहीं है, आपको देखना चाहिए था, देखो मैं कितने टाइम से आया हूँ, मैं सीनियर डिवोटी हूँ, ये जूनियर डिवोटी है। इस तरह से हम लोग सब सोचते रहते हैं। तो इसलिए भक्ति का वास्तविक आस्वादन जो है वो हम नहीं कर पाएंगे। तो तो भक्ति के तत्व को समझना बहुत आवश्यक है। तो हम जो इतना सारा जो कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं उसके पीछे एक ही है कि भक्ति के जो मूल तत्व है उसको समझना बहुत आवश्यक है, और अगर हम उसको नहीं समझेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये भक्ति विज्ञान है जो हमें सिखाती है कि किस तरह से हमें भक्ति में आगे बढ़ना है परास्त होके। एक बार परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से किसी ने कहा कि एक बार का जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था उसमें चौपाटी टेम्पल बहुत आगे आ गया, नंबर वन नंबर टू पे पहुंच गया कुछ। तो किसी ने महाराज से कहा कि देखो आपका मंदिर बहुत आगे आ गया। तो महाराज ने उनसे कहा दैट वी वांट टू डिस्ट्रीब्यूट मिलियंस ऑफ बुक्स एंड स्टिल वी वांट टू कम लास्ट। इसका मतलब क्या है कि हम बहुत पुस्तकों का वितरण करना चाहते हैं लेकिन फिर भी हम लास्ट में आना चाहते हैं। तो महाराज ये बता रहे थे कि हम इतना करेंगे और इतना करने के बाद भी अगर लास्ट में आएंगे इसका मतलब ये कि मेरे से आगे जो है उन्होंने ट्रिलियंस एंड बिलियंस की बुक्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो अभी समय पूरा हो गया है, समय की मर्यादा है, और हमने सिर्फ एक श्लोक पे चर्चा की है आठ में से। अभी हमने परामृष्टम अत्यंत तो धृत्य गोपिया सिर्फ ये चौथी लाइन पे चर्चा की है, और उसके बाद बहुत कुछ चर्चा करने के लायक है, बहुत कुछ जानने योग्य है, पर हमारे पास इतना समय नहीं है, समय की मर्यादा है, तो हम यहीं पे इसको विराम देंगे। और आगे अगर हमें चांस मिलेगा कभी, क्योंकि दामोदर का महीना अभी कम से कम चार फ्राइडे और आएंगे, अगर चांस मिलेगा मौका मिलेगा तो बाकी की जो सात वर्ष है उस पर हम और कुछ बताने की कोशिश करेंगे। अब के लिए हम सिर्फ यहीं पे रुकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राधा दामोदर भगवान की, नेताई गौर प्रेमानंद की।